संत नाभादास जी द्वारा लिखी हुई भक्तों की जीवन गाथा भक्तमाल, जिन्हें सरल भाषा में आप तक पहुंचा रहे हैं हमारे अपने प्रभु जी के परम भक्त अरविंद चौधरी जी।
राधे राधे। राधे राधे। भक्तमाल श्रृंखला में आज चरित्र करते हैं श्री रामानुजाचार्य जी का। राधे राधे। हरि सो जगवस्तु नहीं, प्रेम पंथ सो पंथ, सदगुरु सो सज्जन नहीं, भक्तमाल सो ग्रंथ। श्री भक्तमाल के सभी भक्तों संतों को प्रणाम। श्री भक्तमाल की जय। सीताराम राधेश। श्री रामानुजाचार्य जी श्री भगवान शेष जी के अवतार हुए और ये लक्ष्मण जी के अवतार हुए। हजार मुख से इन्होंने भक्ति का प्रचार किया है। जैसे भगवान शेष जी के हजार मुख हैं, उन्हीं से भक्ति का प्रचार किया है। इनके बारे में शुरू में ही एक कथन है कि अपने गुरु जी की आज्ञा की अवहेलना करके इन्होंने एक बार में ही 72 लोगों को भगवान के दर्शन करा दिए थे, गुरु जी की आज्ञा की अवहेलना करके। वो दृष्टांत ऐसा है, वो है घटना ऐसी है कि जब गोष्ठीपूर्ण जी जो इनके गुरु जी थे, उनसे इन्होंने मंत्र दीक्षा ली कि मंत्र दीक्षा, ये बार बार कहते थे मंत्र दीक्षा, वो बार बार मना करते थे, नहीं अभी नहीं, अभी नहीं, समय नहीं है, अभी समय नहीं, अभी समय नहीं। 18 बार इन्होंने बार बार जिद करी अलग अलग समय पे। तो एक दिन वो रीझ गए और उन्होंने इनसे शपथ ली कि ये तुम अपने तक सीमित रखोगे, ये बहुत गुप्त मंत्र है, इससे तुम्हें तत्काल भगवत प्राप्ति होगी। इन्होंने कहा ठीक है, बताओ आप। इन्होंने मंत्र लिया। मंत्र लेते ही इनको भगवान नारायण के साक्षात दर्शन हुए। दर्शन हुए, आनंद की इनकी सीमा न रही, गदगद हो गया हृदय इनका, आनंद से अभिभूत होकर ये ऊपर चढ़े और इन्होंने चिल्लाना शुरू कर दिया। वही मंत्र इन्होंने पूरे नगर में सुना दिया रात में चिल्ला के। तो वो बहुत सारे लोगों ने सुना मंत्र और जोर जोर से उसका उच्चारण करते रहे कि अपना कल्याण कर लो, कर लो, अभी कल्याण कर लो, अभी कल्याण कर लो अपना। बार बार मंत्र का उपदेश किया। मंत्र तुरंत ही जिन 72 लोगों ने बड़े ध्यान से उस मंत्र को सुना और विश्वास किया इनकी वाणी पे, उनको तत्काल भगवत प्राप्ति हो गई। ये बात गुरुजी को पता चली, वो बहुत रुष्ट हुए इनसे, क्रोधित हुए और उनको सामने खड़ा करके बोले कि तुम घोर नरक में जाओगे। और ये इनकी अश्रुधारा चल रही थी, बोले गुरुजी मैं नरक में जाने को तैयार हूँ, यदि मेरे द्वारा इतने जीवों का उद्धार हो जाए और उसके इतने जीवों को भगवत प्राप्ति कराने के बाद यदि मैं नरक में भी चला जाऊँ ना, तो मैं जाने के लिए तैयार हूँ, कम से कम उनको तो भगवान मिल गए। तो जब उनके गुरुजी ने ये बात सुनी तो हृदय से लगा लिया, बोला इतने लोगों को भगवत प्राप्ति करा दी तुमने, तो तुम कैसे नरक में जा सकते हो? और तुम्हारा जो ध्येय था वो जग कल्याण करना था, मतलब मेरी अवज्ञा के बदले तुमने जग कल्याण किया है, तो इसलिए उसका तुम्हें कोई भी प्रभाव नहीं है। तो आओ, हृदय से लगाया उनको और कहा तुम इसी तरह जग का कल्याण करते रहो। तो इन्होंने ऐसे ही भगवान नाम प्रचार किया, भक्ति का ऐसा अद्भुत प्रचार इन्होंने किया कि पूरे देश में भक्ति की एक जैसे बाढ़ आ जाती है, भक्ति की बाढ़ ये लेके आई, भगवान लक्ष्मीनारायण की भक्ति की बाढ़ आई, लोगों को इन्होंने चलते फिरते दर्शन कराए भगवान के, वो ये लेके आए। एक बार का एक और है कि इनके गुरुजी से कुछ वैष्णवों ने पूछा कि महाराज जी ये इतने चमत्कार कर देते हैं तो क्या चमत्कार भक्ति में सही है चमत्कार करना? तो गुरुजी ने कहा नहीं, भक्ति मार्ग में चमत्कार करना ठीक नहीं है, चमत्कार दिखाने नहीं चाहिए, लेकिन जहाँ उनकी आवश्यकता होती है, विमुख लोग होते हैं और जहाँ चमत्कार दिखा के ही काम बनता और वो सही पथ पे आते हो, तो चमत्कार कर भी देना चाहिए, खाम का चमत्कार नहीं करना चाहिए। तो इनके गुरुजी ने जिद करी, गुरुजी के सम्मुख उन्होंने वैष्णवों ने जिद करी कि इन्हें भगवान शिव के अवतार माने जाते हैं रामानुजाचार्य जी, तो क्या ये हम अगर 1000 लोग मिलकर एक साथ 1000 प्रश्न करें तो क्या ये एक बार में 1000 के प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं क्या? पहले तो गुरुजी मुस्कुराए, तो वो कहने लगे कि जी नहीं, हम चाहते हैं, मतलब हम ये चमत्कार देखना चाहते हैं कि क्या वो हम 1000 लोगों के प्रश्नों का, अलग अलग प्रश्नों का एक साथ क्या 1000 मुखों से उत्तर दे सकते हैं? तो गुरुजी ने आज्ञा दे दी कि ठीक है दे देंगे। इनको बिठाया गया रामानुजाचार्य जी को, और वो तो जानते थे कि ये तो भगवान शेष के अवतार हैं। रामानुजाचार्य जी ने कहा ठीक है हम दे देंगे, लेकिन शर्त ये रहेगी कि बीच में एक पर्दा डाल दिया जाए, आप हमें ना देख पाएं, फिर आप उधर से प्रश्न कीजिए हम उत्तर देंगे। पर्दा डाल दिया गया। 1000 वैष्णव लोग उधर बैठे, सब ने अपने अपने प्रश्न एक साथ बोले, एक साथ प्रश्न बोले, और इधर से भगवान शेष ने 1000 प्रश्नों का उत्तर एक साथ दिया, 1000 मुखों से। तो जो वो प्रश्नों का उत्तर दे रहे थे, उनमें से कुछ वैष्णवों ने वो पर्दा हटा के देख लिया उनकी छवि, और वो देखी 1000 मुख लिए बैठे थे भगवान शेष। तो वो देखते ही मूर्छित होकर गिर गए। तो उनमें से जितने लोगों ने भी दर्शन किए वो मूर्छित हो गए, उनकी मूर्छा बहुत देर बाद खुली है, वो मूर्छित, उन्होंने भगवान शेष के साक्षात दर्शन किए। तो ऐसे चमत्कार रामानुजाचार्य जी के शुरू में ही हुए। इनकी एक और, इनके जन्म पे आने से पहले एक और घटना बताते हैं कि एक बार ये भगवान जगन्नाथपुरी में भगवान के दर्शन करने गए अपने शिष्यों के साथ में, 1000 शिष्य साथ में थे। वहाँ इन्होंने देखा जो पंडे लोग थे वो ना तो वैदिक तरीके से भगवान को भोग लगा रहे हैं, मंत्रों का कोई उच्चारण नहीं कर रहे हैं, वैसे ही नॉर्मल जिस तरीके से उनकी सेवा चल रही है, ये इनको बड़ा दुख हुआ, ये भगवान की कैसे सेवा कर रहे हैं। इन्होंने वहाँ के जो नरेश थे जगन्नाथपुरी के, उनसे बात करी कि इन पंडों को हटाओ यहाँ से, ये सेवा हम करेंगे, भगवान की कैसे सेवा हो रही है यहाँ पे, इसमें कुछ भी वेद के नियमानुसार कोई सेवा नहीं है, मंत्र उच्चारण नहीं है, कुछ नहीं, भगवान को ना वैदिक मंत्र सुनाए जा रहे हैं, कुछ नहीं, ऐसे हटाओ इन्हें। वो सब हटा करके इन्होंने सेवा अपने हाथ में ले ली वहाँ पे, इनके शिष्य और ये मिलकर सेवा भोग राग सब करने लगे। वहाँ के जो पंडा लोग थे वो बड़े रुष्ट हुए, और कर भी क्या सकते थे, वो इनके हाथ में सेवा चली गई, राजा ने कहा था, उनसे सब कुछ छीन लिया गया। तो उनके पास तो उनकी आज जीविका ही चुन गई है, वहीं से तो उनकी जीविका चल रही थी, और वो बड़े रुष्ट हुए भगवान की सेवा छोड़ कर के भी। वो बैठे रहते थे बेचारे, रोते रहते थे, वो दिन भर वो आपस में बैठ के चर्चाएं करते और रोते, उनके आंसू बहते कि इतने दिनों से हम सेवा करते आ रहे हैं, इन्होंने हमारी सेवा छीन ली है, और भगवान से करुण पुकार करते, क्या तू तो भगवान है, क्या तू सुन नहीं रहा है, हमारी बात नहीं सुन रहा है, हमारी तो रोजी रोटी तक चली रही गई, सबका इंतजाम तू करने वाला, तेरे सहारे जी रहे हैं हम कब से, अब हमारा क्या होगा, हमारे परिवार हैं, हमारे बच्चे हैं, क्या होगा। वो इस तरीके से जब करुण पुकार कर रहे थे, भगवान से उनकी पुकार देखी ना गई। भगवान इनके तो छोटे भाई रहे हैं वो श्री कृष्ण जी, तो श्री कृष्ण जी जगन्नाथ स्वरूप में इनसे प्रकट होकर इनसे कहा कि ऐसा करो आप स्वामी जी, आप चले जाओ, हम सेवा ठीक कर रहे हैं, हमारी चल रही है सेवा, आप जाओ वो कर लेंगे। ये उन्हें बोलने नहीं देते थे कि चुप, आप चुप रहिए, हमें पता है कि अब सही सेवा नहीं हो रही, आप चुप रहिए। तो भगवान ने कई बार बोलने का प्रयत्न किया, ये भगवान को चुप करा देते थे कि आप चुप, जब भी भगवान कुछ कहते तो ये चुप कर देते थे। भगवान भी सोचने लगे इनसे कैसे बचें, कैसे भेजें इनको यहाँ से। उधर उनकी वो दिन रात रोना चल ही रहा है भगवान के सामने। अब वो तो भगवान के भक्त स्वरूप हैं, वो थोड़ा ही वेद मंत्र करके लगाएंगे, भगवान तो भाव देखते हैं। अब उनके भाव हैं भगवान में, हमारे हैं भगवान, हमारे हाथ से ऐसे ही खाते हैं भगवान। तो जिनके हाथ से जिस प्रकार, जैसे ऐसे बहुत सारे भक्त, नामदेव जी का चरित्र आया कि वो थोड़ा वेद मंत्र पढ़ करके भोग लगाते थे, मीरा जी भाव से भोग लगाती थी, धन्ना सेठ भाव से भोग लगाता था, कर्मा बाई खिचड़ी ऐसी आरोग भोग लगा देती थी ना, भगवान आरोगते थे थोड़े वेद मंत्र। और आज भी जो लोग भाव से भोग लगाते हैं, भाव से ग्रहण करते हैं भगवान, यही यहाँ पे भगवान ने बताने के लिए रामानुजाचार्य जी के सामने ये लीला प्रकट करी। उन्होंने एक दिन, भगवान उदास मुद्रा में बैठे हुए थे जगन्नाथ भगवान, सामने गरुड़ जी हैं, गरुड़ स्तंभ है, तो गरुड़ जी को उन्हें दिखाई दिया कि बड़ा उदासी वाला भगवान का चेहरा बना हुआ है, क्या बात है। तो गरुड़ जी ने क्या, जय जय, क्या बात है, बोला अरे बात क्या है, बड़े परेशान हैं, क्या हुआ, बोला ये सुन ही नहीं रहे हैं स्वामी जी किसी की, ये मानते नहीं हैं हमारी भी नहीं, और बोलने देते नहीं हैं, हम कुछ कहने को बोलते हैं ये चुप कर देते हैं कि चुप, बोलना नहीं। तो गरुड़ जी समझ गए कि हमारे सामने ये थोड़ा इतने लाचार हैं कि जितने लाचार ये बने हुए हैं भगवान, भगवान थोड़ा ही लाचार होते हैं, ये हमसे कुछ कराना चाह रहे हैं, हमारी सेवा लेना चाह रहे हैं। वो समझ गए कि भगवान तो ऐसे ही करते हैं जब सेवा लेते हैं। बोले आज्ञा करें प्रभु, क्या करना है आप बताइए। बोला आज रात में सोएंगे ना स्वामी जी, इनके सारे 1000 के 1000 शिष्यों के सहित इनको उठा के रंगनाथ जी भेज दो। बोले जो आज्ञा प्रभु। तो इन्होंने, गरुड़ जी ने जब ये सोए रात में, सारे के सारे ऐसे उठाए कि इन्हें पता भी नहीं चला, और सीधे जब ये उठे सवेरे ही सीधे रंगनाथ जी में, सारे शिष्य उठे कहाँ है, रंगनाथ जी में आ गए रात रात में। तो वो बहुत ज़ोर से हंसे, रामानुजाचार्य जी बहुत हंसे अपने शिष्यों के साथ में, और वो बोलने लगे कि सही में भाई, हम मान गए हैं कि भगवान ना भाव के भूखे होते हैं, उनके भाव हैं उनके प्रति, तो प्रभु देखो भाव के कितने भूखे हैं कि वो नहीं वेद मंत्र देखते, वो नहीं सही तरीका देखते हैं कि इस तरीके से सविधि उनकी पूजा करनी है, सविधि भोग आरोगेंगे, नहीं, हम मान गए। और उन्होंने प्रणाम किया वहीं से, रामानुजाचार्य जी ने वहीं से भगवान को प्रणाम किया कि प्रभु आप और आपके भक्त हम मान गए हैं आपको, हम आपको प्रणाम करते हैं। और फिर भक्ति पे इन्होंने इतना जोर दिया कि चारों तरफ भक्ति का ही इन्होंने खूब नदी की तरह, सरोवर की तरह और सागर की तरह इन्होंने भक्ति का प्रचार किया और लोगों को भव सागर से पार किया। तो इनका जन्म 1074 विक्रम संवत में दक्षिण भारत में हुआ था और इनकी माता जी ने भगवान नारायण की बहुत आराधना की थी। माता पिता ने ही, दोनों ने ही आराधना की, तो भगवान ने स्वप्न दिया कि भगवान शेष ही आपके पुत्र रूप में आएंगे। तो जब भगवान शेष पुत्र रूप में इनको गर्भ हुआ और कर्म में इन्हें महसूस हुआ तो इन्हें दिव्य अनुभूतियाँ होने लगी कर्म में, और ये समझ गई कि स्वयं भगवान ही आ रहे हैं। जैसे देव की माता को होती थी गर्भ में अनुभूतियाँ, ऐसे ही इनको भी दिव्य अनुभूतियाँ होने लगी। तो माँ बड़ी प्रसन्न रहने लगी। वो समय आया भगवान के जन्म का, तो भगवान शेष ने अवतार लिया। अवतार के बाद भगवान जैसे ही बढ़ रहे थे दिव्य लीलाएं कर रहे थे, ऐसे अद्भुत अद्भुत चमत्कार कर रहे थे, क्योंकि ये चमत्कार इन्होंने शुरू से किए हैं। तो ऐसे चमत्कार कर रहे थे कि माता पिता को समझ में आ गया था कि ये साधारण पुरुष तो है नहीं, ये स्वयं भगवान ही है। और भगवान ने स्वप्न आदेश किया था इनको कि शेष भगवान आएंगे, तो माता को और पिता को विश्वास हो गया। तो पिताजी ने ये सोच करके कि भगवान ने कहा था कि ये उद्धार करेंगे, ये जगत उद्धार के लिए प्रकट हो रहे हैं, तो उनके पिताजी को ये लगा कि कहीं ये संन्यास ना ले लें, जगत उद्धार के लिए ये प्रकट हो रहे हैं तो कहीं संन्यास ले लिया, तो इनकी बहुत छोटी सी उम्र में इनका विवाह कर दिया। 16 वर्ष की अवस्था रही होगी, विवाह कर दिया। कुछ दिन के बाद इनके पिताजी जो हैं धाम में पधार गए, तो वो शरीर छोड़ दिया। वहाँ कोई रहा नहीं, तब इन्हें लगा कि भाई मुझे अब चलना चाहिए कांचीपुरी। तो ये अपनी पत्नी और अपनी माता को लेकर के आ गई कांचीपुरी। कांचीपुरी में भगवान वरद राज जी की उपासना करेंगे और वहीं पे कांचीपुरी स्वामी जी हैं, उन्हीं से हम उनका सानिध्य भी प्राप्त होगा और उनसे भक्ति का और जो भी वेद पाठ है वो हम सुनेंगे। तो फिर इन्होंने कांचीपुरी में निवास करके भगवान वरदराज जी का सानिध्य और कांचीपुरी स्वामी जी का सानिध्य प्राप्त किया और वहीं से यादव प्रकाश जी की एक पाठशाला थी जो वेद पढ़ाया करते थे, तो इन्होंने वहीं यादव प्रकाश जी की पाठशाला में वेदाध्ययन शुरू कर दिया। तो आगे का जो प्रसंग है वो हम अगले चैप्टर में शुरू करते हैं, इनका बताते हैं। तब तक के लिए राधे राधे।
ऑडियो पिटारा सुनना जरूरी है।